તારીખ 2-8-1977 શ્રી પ્રવચન સાર ગાથા 200 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 132
પૂરી થઈ તેના 4-2 મિનિટમાં એક ગાથા વધારે છે 200 અને 14મી ગાથા વધારે છે એવું નિજ શુદ્ધાત્મ ભાવના રૂપ નીચે છેલ્લી લીધી એનું મથાળું છે જે વધારાની ગાથા છે એ નમસ્કાર રૂપ છે અંતિમ મંગળ એવમ નિશુદ્ધાત્મ ભાવના રૂપ મોક્ષ માર્ગે ને સિદ્ધિ ગતા એ પ્રકારે પોતાના શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપની ભાવના રૂપ મોક્ષ માર્ગ દ્વારા જે જીવો સિદ્ધિમાં ગયા તે છ એ છ સદ આરાધકા તેષામ દર્શન વિકાર અપેક્ષયા અવસાન મંગલાર્થમ ગ્રંથ અપેક્ષયા મધ્યમંગલાર્થમ ચ તત્પદ અભિલાષી ભૂત્વા નમસ્કારમ કરોતી તે સિદ્ધિમાં ગયા તેને અને તેના તે સિદ્ધિમાં સિદ્ધિના આરાધકોને સિદ્ધિનામાં જવા માટે જે આરાધક ભાવે વર્તી રહ્યા છે એવા સાધક જીવોને દર્શન અધિકારની અપેક્ષાએ એટલે અગ્નિ તત્વપ્રજ્ઞાપનને દર્શન અધિકાર કહ્યો છે જૈષ્ણાચાર્ય સમ્યક દર્શનનો અધિકાર એનું અંતિમ મંગળ અને ગ્રંથ પૂરા ગ્રંથની અપેક્ષાએ મધ્યમંગળ આદિ મધ્ય અને અંત ત્રણેય મંગળ છે એ મંગળને અર્થે તે પદનો અભિલાષી થઈને તત્પદાભિલાષી સિદ્ધ પદનો અભિલાષી થઈને નમસ્કાર કરું છું આ નમસ્કારની ગાથા છે દંશન સંશુદ્ધાણ સમન્નાણ એવ જોગ જુક્તાણ અવવા બાદરદાણ નમો નમો સિદ્ધ સાહુણમ સિદ્ધને અને સાધુને બંને નમસ્કાર કરે નમો નમો સિદ્ધ સાહુણમ નમો 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 નમઃ બે વખત નમસ્કાર ફરીને નમસ્કાર કરે છે પુનઃ પુનઃ નમસ્કારો ઇતિ ભક્તિ પ્રકર્ષમ દર્શયતી બે વખત કહીને પ્રકર્ષ ભક્તિ વિશેષ ભક્તિ ઉત્કૃષ્ટ ભક્તિ બતાવવામાં આવે છે નમો નમો એમ બે કહ્યું નમો નમો સિદ્ધ સાહુણમ ફરી ફરીને નમસ્કાર કરું છું નમસ્કારો ની ઇતિ હું નમસ્કાર કરું છું ફરી ફરીને હું નમસ્કાર કરું છું એ રીતે પ્રકર્ષ ભક્તિ વિશેષ ભક્તિ દર્શાવે છે બે વખત નમસ્કાર કર્યો એમાં ભક્તિની વિશેષતા બતાવી કેભ્ય કોને નમસ્કાર કરું છું કે સિદ્ધ સાહુણમ સિદ્ધ સાધુભ્ય સિદ્ધ શબ્દ વાચ્ય સ્વાત્મ ઉપલબ્ધિ લક્ષણ અરહત સિદ્ધેભ્ય સાધુ શબ્દ વાચ્ય મોક્ષ સાધકા આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુભ્ય સિદ્ધ ને સાધુ એમાં પંચ પરમેષ્ઠી આવી ગયા સિદ્ધ શબ્દ વાચ્ય સિદ્ધ શબ્દ થી પોતાના શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપની ઉપલબ્ધિ લક્ષણ એવા અરહંત અને સિદ્ધ અરહંત અને સિદ્ધનું આ લક્ષણ લીધું છે કે સ્વાત્મ ઉપલબ્ધિ લક્ષણ પોતાના શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપની પરિપૂર્ણ પ્રગટપણું પરિપૂર્ણ પ્રાપ્તિ એને સ્વાત્મ ઉપલબ્ધિ કહેવામાં આવે છે એવું જેનું લક્ષણ છે એવા અરહંત અને સિદ્ધ તેમને નમસ્કાર કરું છું અને સાધુ શબ્દ વાચ્ય મોક્ષ સાધકા આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુભ્ય અને સાધુ શબ્દથી મોક્ષના સાધક એવા આચાર્ય ઉપાધ્યાય અને જે સાધુ છે તેમને હું નમસ્કાર કરું છું પુનરપી કથમ ભૂતેભ્ય વળી કેવા છે તે કે દંશન સંશુદ્ધાણમ मूंधत्रयादि पंचविंशति मल रहित सम्यक दर्शन संशुद्धे व्यह ये दर्शन थी शुद्ध है एम कहू छे दर्शन संशुद्धानम दर्शन द्वारा दर्शन थी जे शुद्ध है जेनु श्रद्धान शुद्ध है त्रण मूंढता मूंढत्रय त्रण मूंढता ए वगैरह पंचविंशति पच्चीस मल रहित सम्यक दर्शन ना पच्चीस दोष रहित त्रण मूंढता सहित ना जे पच्चीस दोष है पच्चीस में त्रण मूंढता आ जाए देव गुरु ने शास्त्र प्रत्येनी जे मूंढ दशा है एट ओखाण पूर्वक स्वीकार श्रद्धा जेने नथी एने देव गुरु शास्त्र में मूंढता कहेवामां आवे छे ए पूर्वक जेना पच्चीस दोष श्रद्धाना पच्चीस दोषना मल रहित सम्यक दर्शन थी जे शुद्ध है पुनरपि कथम भूतेभ्य वड़ी सेना थी कि सम्मन्नानो जोगजुक्तानम संशयादि रहितम सम्यक ज्ञानम तस्य उपयोग सम्यक ज्ञानो उपयोग योगो निर्विकल्प समाधि विद्राग चारित्रम इति अर्थः त्याभ्याम युक्ता सम्यक ज्ञानोपयोग युक्ता तेभ्य दर्शन ने चारित्र लीला संशय वगैरह रहित संशय चार प्रकार त्रण प्रकार दोष कया है ना सम्यक ज्ञान में अनद्यवसाय संशय विपर्य अनद्यवसाय ये आदि में त्रणे ले लेवा इति रहित जे सम्यक ज्ञान है ये सम्य ज्ञान नो जो उपयोग है तेने सम्य ज्ञान उपयोग कहवामां आवे छे जीव ज्ञान ना उपयोग में संशय नहीं स्वरूप संबंधी शंका नहीं स्वरूप संबंधी नो कोई विपर्यास नहीं एटले पर ने पोता रूप क्या पण गणतो नहीं अने अनध्यवसाय परमा स्वबुद्धि अध्यवसान बुद्धि है अध्यवसित थवं उपाधि में अध्यवसित थवं ये रहित जे ज्ञान है ते सम्यक ज्ञान है ये ज्ञान नो जे उपयोग है तस्य उपयोग है तेनो जे उपयोग है ते सम्यक ज्ञान उपयोग है अने योग सम्मनान जोग जोग एटले योग योग एटले जोड़ाण निर्विकल्प समाधि वितराग चारित्रम इति अर्थ योग नो आ अर्थ है योगो निर्विकल्प समाधि वितराग चारित्रम इति अर्थ विकल्प विना नु निर्विकल्प जे समाधि छे इतले के वितराग चारित्र वितरागी स्थिरता छे स्वरूप स्थिरता वितरागी भावे तेने योग कहेवामां आवे छे एम दर्शन ज्ञान ने चारित्र ए त्रण बोल लीधा छे ताभ्याम युक्ता हा तेना थी जे युक्त छे તેને સમ્યક જ્ઞાન ઉપયોગ યુક્તા તે ભય તેને સમ્યક જ્ઞાન અને યોગથી ઉપયોગ કહેવામાં આવે છે પુનઃ કિમ રૂપે ભય વળી કેવા છે કેવા રૂપે છે અવ્વા બાર દરદાનમ સમ્યક જ્ઞાન આદિ ભાવના ઉત્પન્ન અવ્યાબાદ અનંત સુખે સુખે તેભ્યશ્ચ સુખ લીધું સાથું સમ્યક જ્ઞાન આદિ ભાવનાથી ઉત્પન્ન થયેલું જે અવ્યાબાદ અનંત સુખ છે તેનાથી જે સહિત છે એવા દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર અને સુખ સહિત છે એવા સિદ્ધ અને સાધુને હું અહીંયા અધિકારના અંતિમ મંગળમાં નમસ્કાર કરું છું એમ આચાર્યદેવ છેલ્લી ગાથા પણ નમસ્કારને લીધી છે ને નો આગમ ભાવ નમસ્કાર હો બસોમી ગાથામાં એ વિશે આવે ને સ્વયં એવો મન નમસ્કાર ભાવ નમસ્કાર સદાય સ્વયં એવો છેલ્લી નીકળી છે આ રીતે દર્શન વિશુદ્ધિ જેનું મૂળ છે એવું જે સમ્યક જ્ઞાનમાં ઉપયુક્તપણું તેને લીધે અત્યંત અવ્યાબાદ લીનતા હોવાથી હોવા છતાં પણ સાક્ષાત સિદ્ધભૂત એવા નિજ આત્માને નિશ્ચયથી વ્યવહારથી તથાભૂત સિદ્ધ પરમાત્માઓને અને તેમાં જ એક પરાયણપણું, તેમાં જ પ્રયત્નપણું જેનું લક્ષણ છે, એવો ભાવ નમસ્કાર સદાય સ્વયમી મને હો છે અને હો એવી ભાવના છે, એવો ભાવ નમસ્કાર વર્તે છે અને એવો ભાવ નમસ્કાર જ મને સદાય હો. એના ઉપર આચાર્યદેવે, અમૃતચંદ્ર આચાર્યદેવે ત્રણ શ્લોક રચ્યા છે, 10મો, 11મો અને 12મો. સમયસારમાં શ્લોકની રચના ઘણી છે અમૃતચંદ્ર આચાર્યદેવની. 200 ગાથામાં તો લગભગ 150 શ્લોક આવી જાય, એટલા બધા શ્લોકની રચના છે. 200 ગાથા એ 10મો, 11મો અને 12મો. વચમાં કોઈ ગાથામાં શ્લોક ઓછા છે, શરૂઆતમાં અને આદિમાં શ્લોક લે છે. 10મો, જૈનમ જ્ઞાનમ જ્ઞેયતત્વત પ્રણેત્રમ સ્ફીતમ શબ્દબ્રહ્મ સમ્યગ વિભાય સંશુધાત્મ દ્રવ્યમાત્ર એક વ્રત્યા નિત્યમ યુક્તે જય સ્થિયતે અસ્માભિરેવમ. અર્થ એ રીતે જ્ઞેયતત્વને સમજાવનારા જૈન જ્ઞાનમાં, જ્ઞેયતત્વને સમજાવનારા જૈન જ્ઞાનમાં વિશાળ શબ્દ બ્રહ્મમાં સમ્યકપણે અવગાહન કરીને, એટલે કે ડૂબકી મારીને, ઊંડા ઉતરીને, નિમગ્ન થઈને અમે માત્ર શુદ્ધાત્મ દ્રવ્ય રૂપ જે એક વૃત્તિ પરિણતિ તેનાથી સદા યુક્ત રહીએ છે. શું કહે છે આચાર્યદેવ કે જે આ ભગવાન જિનેન્દ્ર દેવે જ્ઞેયતત્વ સંબંધી વિશાળ શબ્દ બ્રહ્મ વહેતો મૂક્યો દિવ્ય ધ્વનિ દ્વારા, એને જૈન જ્ઞાન કહ્યું છે. જિનેન્દ્ર દ્વારા નિરૂપિત તત્વનું જ્ઞાન તેને જૈન જ્ઞાન કહેવામાં આવ્યું, નામ પડ્યું એનું. જ્ઞેયતત્વને સમજાવનારા એટલે વસ્તુના સ્વરૂપને સમજાવનારા, જાણવા લાયક, જ્ઞેય એટલે જાણવા યોગ્ય એવા જ્ઞેય પદાર્થને સમજાવનારા વિશાળ શબ્દ બ્રહ્મમાં, વિશાળ છે અને વિસ્તાર ઘણો છે, સમ્યકપણે અવગાહન કરીને, અવગાહન કરીને એનો અર્થ કર્યો છે, સમ્યક પ્રકારે એમાં ડૂબકી મારીને, ઊંડા ઉતરીને, નિમગ્ન થઈને, એનો સરવાળો શું આવે છે કે ભગવાનની વાણીમાં જે તત્વ સમજાયું એ વિષયમાં અમે જ્યારે ઊંડા ઉતરી જઈએ છીએ, એમાં જ્યારે અમે ડૂબી જઈએ છીએ, એમ કહે છે. એમ નથી કહેતા કે ભગવાનની વાણી વાંચતા, વિચારતા, સાંભળતા અમારો ઉપયોગ બીજે ચાલ્યો જાય છે, એમ કહેતા નથી. લોકો કહે છે ને કે શું કરીએ, અમારો ઉપયોગ બીજે ચાલ્યો જાય છે. આચાર્યદેવ કહે છે અમે એમાં ઊંડા ઉતરી જઈએ છીએ, ડૂબકી મારી જઈએ છીએ અને એ પૂર્વક અમે માત્ર શુદ્ધ આત્મદ્રવ્ય રૂપ જે એક વૃત્તિ તેનાથી સદા યુક્ત રહીએ. અમારો જે શુદ્ધ આત્મા છે, શુદ્ધાત્મ દ્રવ્ય છે, એ રૂપ જે પરિણતિ થઈ જાય છે, ભગવાન જે નિજાત્મ સ્વરૂપ છે, એ રૂપ અમારી જે પરિણતિ છે તેનાથી અમે યુક્ત એટલે જોડાયેલા રહીએ છીએ. શબ્દ બ્રહ્મ ડૂબકી મારીએ છીએ ત્યારે એનું ફળ આ આવે છે, કેમ કે સમ્યક પ્રકારે અવગાહન કરે છે ને, સમ્યક અવગાહન ઉપરથી એક વિશેષ વિચાર એ આવે છે. યથાર્થપણે જીવનું વસ્તુનું સ્વરૂપ કહ્યું છે, એ જ્ઞેય તત્વ ભલે જ્ઞેય પદાર્થ છે પણ એ જ્ઞેયને સમજાવવા જતા આચાર્ય ભગવાનનો દ્રષ્ટિનો દોર એ છે, અથવા એની અંદર હેતુ એ છે કે તું તારા આત્માની સન્મુખ થા. વાંચનારને એ શબ્દ બ્રહ્મ, વાંચનારને અને સાંભળનારનું ધ્યેય અને આશય એ છે કે મારે મારા આત્માની સન્મુખ થવું છે, એમ છે. તો એવું જે એક ધ્યેયને પ્રયોજનને બરાબર સાધતો સુજ્ઞાનના અવગાહન કાળમાં પણ પ્રયોજનને સાધતો જે અવગાહન કરે છે સુજ્ઞાનનું શબ્દ બ્રહ્મનું તેને સમ્યકપણે અવગાહન કહેવામાં આવે છે. આ એની રીતિ છે, કહેનારની આ રીતિ છે. સમ્યકપણે અવગાહન ઇસકા ક્યા પરિભાષા હૈ કે કહેને વાલે કા જો આશય હૈ વો એસા હૈ કે અપને સ્વરૂપ સન્મુખ કા જો પ્રયોજન હૈ વો ઉસમે ધ્રુવ રહેતા હૈ. શબ્દ બ્રહ્મ મેં વિશાળતા બહુત હૈ, વિશાળ શબ્દ બ્રહ્મ મેં સંભા દિયા. તો વિષય કી વિશાળતા બહુત હોતે હુએ ભી ઇસમે એક માધ્યમ ધ્રુવ રૂપ મેં એસા હૈ કે સ્વરૂપ સન્મુખ કા જો પ્રયોજન હૈ વો સ્વયં ધ્રુવ રૂપ રહેતા હૈ. ઉસકો અવગાહન કરને વાલા, ઉસકો સુનને વાલા, પઢને વાલા, ઉસકો સમ્યક અવગાહન કેસે હૈ કે જૈસા કહેને વાલે કા ભાવ હૈ વૈસા હી ભાવ, વૈસા હી અભિપ્રાય. મતલબ શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપ સન્મુખ કા જો પ્રયોજન વો પ્રયોજન કો સાધતા હુઆ જબ વો કહેને વાલે કા આશય કો દેખતા હૈ તો ઉસકો કહેને મેં આતા હૈ કે વો સમ્યક સમ્યકપણે શબ્દ બ્રહ્મ કા સત્શાસ્ત્ર કા અવગાહન કરતા હૈ. ઉસી પ્રકાર સે ભગવાન કી વાણી કો ગુરુ પરંપરા સે જો ચલી આઈ હુઈ ચીજ હૈ ઉસકો આચાર્ય મહારાજ કહેતે હૈ કે હમ ઉસકો સમ્યક પ્રકારે અવગાહન કરતે હુએ ઉસમે ડૂબતે હૈ, ઉસમે નિમગ્ન હોતે હૈ. બહેન જી કી નિકલી ને પુસ્તક વચનામૃત, એ વાત બહુ આઈ હૈ કે આત્માર્થી કો આત્મા કી લગ્ની કૈસી હોતી હૈ. બાર બાર ઉસી બાત પર બહુ વાત આઈ હૈ. એસી લગન હોતી હૈ તો ઉપયોગ વૈસે ઉધર ઉધર ઇધર ઉધર ચલતા નહીં જાતા. વૈસે સમ્યક પ્રકારે શબ્દ બ્રહ્મ કો અવગાહન કરકે હમ તો માત્ર શુદ્ધાત્મ દ્રવ્ય રૂપ જો હમારી પ્રણતિ હૈ ઉસસે યુક્ત રહેતા હૈ, ઉસસે બહાર જાતે હૈ. ઉન્હી કી બાત બહોત લી હૈ. આગે કરીબ 150-200 કે જીતને પોઈન્ટ હૈ, જીતને 50 પોઈન્ટ મેં તો ઉન્હી કી બાત બહોત લી હૈ. બહોત મતલબ જમા દી મુનિ તો બહાર નિકલતે હિ નહીં, એસા શુદ્ધાત્મ દ્રવ્ય કા અભ્યાસ હો ગયા હૈ કે વૈસા ઉપયોગ થોડા બાદ બહાર જાતા હૈ તો ભાઈ સહજ રૂપ મેં અંદર આ જાતા હૈ, સહજ રૂપ મેં અંદર આ જાતા હૈ, લાના પડતા સહજ રૂપ. એસા હિ અભ્યાસ હો ગયા હૈ કે થોડા બહોત સમિતિ ગુપ્તિ મેં બાહ્ય કાર્યક્રમ મેં યા તત્વ કે વિકલ્પ મેં થોડા સા જાતા હૈ તો ફિર અંદર ચલા જાતા હૈ. એસી કોઈ અંતર અભ્યાસ કી ચીજ મુનિ દિશા મેં બહુ બાત ઉલટ પુલટ કર બાર બાર એ વાત કો બહુ બાર બાર લીધા. વિશાળ શબ્દ બ્રહ્મ મેં સમ્યક રૂપ અવગાહન કરકે વિશાળતા કિતની ભી શબ્દ બ્રહ્મ કી હોતી હૈ ફિર ભી વો શબ્દ બ્રહ્મ મેં એક હી આશય હૈ, એક હી અભિપ્રાય હૈ કે નિજ સ્વરૂપ કે સમૂહ હોના, નિજ સ્વરૂપ મેં લીન રહેના, નિજ સ્વરૂપ કા શ્રદ્ધા જ્ઞાન ચારિત્ર રૂપ પરિણતિ મેં મસ્ત રહેના. ઇસકે સિવા કોઈ અભિપ્રાય હૈ નહીં. आचार्य महाराज कहते हमारा तो अवगान ही ऐसा है तो हम इसमें युक्त रहते हैं, हमारी सिद्धात्म द्रव्य रूप जो परिणति हो जाती है इसमें सदैव रहते हैं। ऐसा जैन ज्ञान है, इसको जैन ज्ञान कहने में आया है। और श्लोक द्वारा दूसरा अध्याय का मतलब, और श्लोक द्वारा मुक्त आत्मा का ज्ञान का महिमा करके, मुक्त आत्मा के ज्ञान का महिमा करके नील तत्व प्रज्ञापन अधिकार की पूर्णाहुति करने में आती है। श्लोक द्वारा अंतिम मंगल करने में आता है। नील कुर्वन अंधशासिन विश्वम ज्ञानी कुर्वन ज्ञेयम आक्रांत भेदम आत्मी कुर्वन ज्ञानम आत्मन्या अन्यभाषी स्फुर्जति आत्मा ब्रह्म संपद्य सद्य। अर्थ, आत्म ब्रह्म को शीघ्र पाकर आत्म ब्रह्म मैंने परमात्मपणा रूप सिद्धत्व सिद्धत्व दशा को शीघ्र पाकर असीम अनंत विश्व को शीघ्रता से जगत से मैंने शीघ्रता से एक समय में ज्ञेय रूप करते वेदों को प्राप्त जो ज्ञेय उस ज्ञेयों को ज्ञान रूप करते अर्थात अनेक प्रकार के ज्ञेयों को ज्ञान में जानते और स्वपर प्रकाश ज्ञान को आत्मा रूप करके प्रगट देदी विमान होता है, महिमा है। कैसा है सिद्ध परमात्मा अथवा सिद्ध दिशा जो होती है तो उसमें उसमें आत्म ब्रह्म को आत्मा ब्रह्म ब्रह्म इसकी दिशा है तो त्रिकाल एक रूप ध्रुव है तत्व उसको ब्रह्म कहने में वेदांत की शास्त्र परिभाषा में इसका बहुत प्रयोग है। ब्रह्म शब्द का इसमें बहुत प्रयोग है वेदांत की परिभाषा में। प्रज्ञानम ब्रह्म एक वेद का सूत्र है, मोनोग्राम एक चार वेद का चार तम मसी अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि में तत्व स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ और प्रज्ञानम ब्रह्म ब्रह्म है तो ज्ञान स्वरूप है। स्थानकवासी वगैरह से तो बहुत ज्यादा कुछ ज्ञान होते हैं। स्थानकवासी जो इनका एक संप्रदाय हो गया ना इसमें गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान में भी है राजस्थान में कुछ ज्यादा उन लोगों से तो ज्यादा तत्वों की विचारणा ये वेदांत वगैरह में है। तत्व का तत्व ज्ञान का हजारों ग्रंथ उन लोगों ने रचा है। स्थानकवासी जैन संप्रदाय कहने में आता है, नाम से जैन है फिर भी तत्व ज्ञान का ग्रंथ से कोई रचना इसमें है। वो तो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है, आत्म ब्रह्म है इंद्रिय ज्ञान का तो विषय ही नहीं। कोई सुन के धारणा करके बुद्धि चला ले लेकिन वो कोई बुद्धि का विषय है। बुद्धि में जब ज्ञान की पर्याय पांच इंद्रिय और मन का संग छोड़ के अतीन्द्रिय ज्ञान रूप जब ज्ञान की पर्याय अंतर्मुख में हो जाती है तब तो उसको ब्रह्म क्या है आत्मा क्या है उसका अनुभव होता है। वो अनुभव ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। ये कोई बुद्धि लड़ाने की चीज नहीं, समझी मिली है कि पूरे पूरे 500 वर्ष के काल में कोई ऐसा बुद्धिमान भी इस संप्रदाय में पैदा हुआ है ऐसा दिखने में आता। पर मैंने संपूर्ण परमात्म दशा प्रकट करके असीम विश्व को शीघ्रपणे ज्ञेय रूप करके असीम मैंने अनंत अनंत विश्व में पदार्थ की संख्या अनंत है और प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव गुण कर्म भी अनंत है। वैसे असीम जिसकी सीमा नहीं ऐसे विश्व को एक समय में शीघ्रता से मैंने एक समय में एक सेकंड के ऐसे के बाद में पूरा पूरा निरूप करके भेदों को प्राप्त जो ज्ञेय वो पदार्थ रूप जो ज्ञेय है जगत विश्व के छह जाति के उसमें जो द्रवगुण पर्याय और गुण धर्म के जो अनंत प्रकार के भेद हैं वो ज्ञेयों को ज्ञेयों का भेद को ज्ञान रूप करके मतलब उसको पूरा पूरा जान लेते हैं। कोई भेद प्रभेद केवल ज्ञान में जानने में वंचित रहते बाकी नहीं रहते जान करके और स्वपर प्रकाशक ज्ञान को आत्मा रूप करके स्वप्रकाशक को आत्मा रूप करके और पर प्रकाशक को पर रूप करके स्वपर प्रकाशक ज्ञान आत्मज्ञान में है। केवल ज्ञान की व्याख्या सर्वज्ञ तो शक्ति आत्मज्ञान में ही वो और पर को जानने वाला ज्ञान है वो केवल ज्ञान आत्मज्ञान में है। वो पर को जानने वाला पर तन्मय होता पर में तन्मय होता ऐसे स्वपर प्रकाश ज्ञान को आत्मा रूप करता हुआ प्रगट देदीप्यमान होता है। प्रगट गुण की जो शोभा है केवल ज्ञान की वो प्रगट पड़े व्यक्त रूप में शोभित होता है ऐसे केवल ज्ञान की सिद्ध दशा परमात्म दशा की महिमा की है। अब श्लोक द्वारा अंतिम श्लोक द्वारा द्रव्य और चरण को द्रव्य और आचरण उस चरण का संबंध बताती ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन नाम का द्वितीय अधिकार की और चरण योग सूचक तुलिका नाम का तृतीय अधिकार की संधि दर्शाने में आती है। अंतिम श्लोक द्वारा आत्म पदार्थ और उसका आचरण उसमें क्या संबंध रहता है वो संबंध मेल वाला होता है। आत्म पदार्थ और इसका आचरण पर्याय में जो होता है उसका दुमेल उसका विसंवाद होना चाहिए ऐसा संबंध बताकर नेतत्व प्रज्ञापन नाम का द्वितीय अधिकार ये अधिकार चालू उसका और आने वाला जो चरणानुयोग सूचक आचरण का कोई अगर बात करना है उसकी जो तृतीय अधिकार वो दोनों का संधि करने में आता है। उसमें विषय का अनुसंधान संधि मैंने विषय का दोनों विषय का अनुसंधान इस श्लोक से करने में आता है। विमल सिंह जी का भगवत द्रव्यानुसारी चरणम विमल सिंह जी का चरण द्रव्यानुसारी चरणम चरणानुसारी द्रव्यम मिथो द्वयम् इदम् ननु सव्यपेक्षम् तस्मान् मुमुक्षु अधिरोहतु मोक्षमार्गम् द्रव्यम् प्रतीत्य यदि वा चरणम् प्रतीत्य। चरण द्रव्य अनुसार होता है और द्रव्य चरण अनुसार होता है इस प्रकार ये दोनों परस्पर अपेक्षा सहित है। क्या था कि चरण मैंने आचरण आचरण मैंने चारित्र गुण का पर्याय उसको आचरण कहने में आचरण को हो चरण को हो चारित्र को हो और आत्मा का उपयोग जो स्थिर होता है जहाँ स्थिर होता है उसको आचरण कहने में आता है। एक चरण है और चरण वो द्रव्य के अनुसार होता है जैसा द्रव्य होता है वैसा आचरण होता है इनका स्वभाव ऐसा है। द्रव्य का ऐसा स्वभाव है कि जैसा वो खुद स्वयं होता है वैसा ही उसका आचरण होगा ऐसा उनका स्वभाव है। जिस जाति का जिस रूप का द्रव्य है, द्रव्य का जो स्वरूप है, वो स्वरूप से विपरीत रूप से आचरण होना वो द्रव्य का स्वभाव नहीं, ऐसा द्रव्य का स्वभाव होता है। आचरण द्रव्य अनुसार होता है और द्रव्य आचरण अनुसार होता है, और जैसा वो शुद्धाचरण है वैसा ही द्रव्य होता है। जैसा व्यक्त शुद्ध आचरण है वैसा ही अव्यक्त द्रव्य है। अगर द्रव्य को देखना है तो तुम व्यक्त आचरण से उसको देख ले, ऐसी बात है। वो तो अव्यक्त चीज है ना, द्रव्य सामान्य स्वभाव परम पारिणाम भाव, वो तो सामान्य स्वरूप है। तो वो जो सामान्य स्वरूप है वो तो व्यक्त देखने में आता है नहीं। तो जो व्यक्त जो आचरण है वो व्यक्त आचरण से द्रव्य होता है, द्रव्य का देखने में आचरण से होता है। ग्रहण किया है, जैसे कोई आम का या कोई आम का गुठली या कोई भी बीज को बोता है आदमी, तो वो बीज में जब वो बोता है उसी काल में उसको कोई वृक्ष का पेड़ वगैरह का फल फूल ये दिखने में आता है, व्यक्त रूप से नहीं दिखने में आता है। लेकिन उसी बीज में उसको विश्वास है, श्रद्धा है कि ये बीज है, इसमें इस प्रकार का बाहर से फल आने की ताकत रही है। बीज में विश्वास जब तक होता है, वैसे अव्यक्त जो है राम है वो अव्यक्त है, लेकिन व्यक्त ज्ञान में उसमें विश्वास करने का बीज रूप हमें दर्शन को गुना चाहिए, ऐसा भाव में पहुंची है। ज्ञान दर्शन से बात न्याय 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 से बात बोलती थी। ज्ञान स्वभाव है वो ज्ञान स्वभाव माँ स्वीकार करने रूप, ज्ञान स्वभाव का स्वीकार करने रूप जो समय दर्शन है वही बीज है। अगर प्रतीत आदि है ऐसा ही है ज्ञान लक्षण है, ज्ञाय की प्रतीत आई तो उसमें केवल ज्ञान का फल आने का कोई अविश्वास करने का सवाल पैदा होता है। वैसे ये द्रव्य और चरण दोनों परस्पर अपेक्षा सहित है, मैंने दोनों अपने रूप में एक दूसरों को साम्य रखता है, एक दूसरे में आपस में परस्पर में साम्य रखता है। द्रव्य है वैसा ही चरण है, चरण है वैसा ही द्रव्य है, वैसे एक से दूसरे की अपेक्षा से उसका ज्ञान होता है। अपेक्षा रखता है मतलब कि एक की अपेक्षा में दूसरे का ज्ञान होता है आपस में परस्पर में, द्रव्य की अपेक्षा में पर्याय का और पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य का ज्ञान होता है। इसलिए दोनों परस्पर में सापेक्ष हैं, इसलिए या तो द्रव्य का आश्रय करके अथवा तो चरण का आश्रय करके, या तो द्रव्य का आश्रय करके या तो आचरण का आश्रय करके, ठीक क्रिया का आश्रय करना है। वो रूप करण ही जाना है उसको पर्याय का आश्रय कहने में, चरण का आश्रय किसको कह रहे हैं कि ऐसा आचरण मुमुक्षु का स्वयं का हो जाए उसको चरण का आश्रय कहने में आता है। या तो द्रव्य का आश्रय कहो या चरण का आश्रय कहो, तो एक ही बात है। अथवा का मतलब ही ऐसा है कि ये कहो या ये कहो, शब्द अलग अलग है, भाव तो दोनों का एक ही है। द्रव्य का आश्रय करके या तो चरण आचरण का आश्रय करके, मुमुक्षु है ज्ञानी है मुनि है वो मोक्ष मार्ग में आरोहण करो, मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो,
मोक्ष मार्ग में वो आधा आ जाओ, स्वरूप का दृढ़ स्वभाव का आश्रय करके या उस रूप परिणाम करके, दोनों एक ही बात है। मोक्ष मार्ग में अपना पांव रखो, परिणाम रखो, ऐसी भावना रूपी ये अंतिम मंगल है। आरोहण करो, सभी ज्ञानी सभी मुमुक्षु जी ऐसे मोक्ष मार्ग में आ जाओ, ऐसी हमारी सबों के प्रति भावना है। इस प्रकार श्रीमद भगवत कुंकुंडाचार्य देव प्रणीत श्री प्रवचन सार शास्त्र की श्रीमद अमृत चंद्राचार्य देव वीरसी तत्व दीपिका नाम की टीका में मूल तत्व प्रज्ञापन नाम के द्वितीय श्रुत संघ समाप्त हुआ, दूसरा अधिकार समाप्त हुआ। ये सारा शास्त्र में तीन अधिकार है, क्या है संक्षिप्त में क्या क्या चल गया इस अधिकार में। इसी नमस्कार गाथा से दोषों की आखिर की गाथा है, नमस्कार गाथा इसी नमस्कार गाथा सहित खल चतुष्ट चतुर्थ विशेषंतराधिकार समाप्त। ये नमस्कार की आखिर की गाथा सहित चौथे स्थल में चतुर्थ चौथा विशेषंतराधिकार समाप्त हुआ, उसमें अंतर अधिकार लेके पिताधिकार। ये वो अतीत निश्चित दशही आदि एकादश गाथा पर्यंतम शुभ अशुभ शुद्धोपयोग त्रय मुख्यत्वेन प्रथमो उपयोग अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग, ऐसा तीन प्रकार के उपयोग की मुख्यता से प्रथम विशेष अंतराधिकार, प्रथम जो अधिकार है अंतराधिकार है उसमें ये विषय लिया है उपयोग का, इसका तीन भेद लिया। तदनंतरम प्यार उसके बाद अनंतरम मैंने अंतर उसके बाद अंतर नहीं रखते हुए, उसके बाद मैंने उसके बीच में कोई अंतर है नहीं। तदनंतरम अपदेशो परमाणु उपदेशम एतो यह इत्यादि गाथा नवक पर्यंतम, ऐसे नव गाथा पर्यंत पुद्गलानाम परस्पर बंध मुख्यत्वेन द्वितीयो विशेष अंतराधिकार। नव गाथा पर्यंत पुद्गलों का परस्पर बंध कैसे होता है ये कुंडकुंडाचार्य देव ने 275 गाथाओं प्राकृत में रखी है। अमृत चंद्राचार्य देव ने सुखंड नामक नई तत्व प्रज्ञापन है, अनादिकाल से परिभ्रमण करता हुआ जो सब कुछ कर चुका है, पर स्वपर का भेद विज्ञान उसने कभी किया नहीं। मंद मार्ग में उसी प्रकार मोक्ष मार्ग में जीव अकेला ही करता कर्म करण और कर्म फल दोनों है, पर के साथ उसको कभी भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं। ऐसी अनुभव श्रद्धा अनुभव सही श्रद्धा उसको कभी हुई नहीं, इसलिए हजारों मिथ्या उपाय करने के बावजूद भी दुख मुक्त नहीं होता, उसका दुख छूटता नहीं। इस खंड में आचार्य भगवान ने प्रत्येक द्रव्य उत्पाद वही द्रव के सिवा गुण पर्याय समूह के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं, सत को द्रव्य को उत्पाद वही द्रव को गुण पर्याय का पिंड को ये सब एक ही है। यह त्रिकालग्न जिन भगवंतों ने साक्षात देखा हुआ वस्तु का वस्तु स्वरूप का मूलभूत ये पाया का सिद्धांत है, वितराग विज्ञान का ये मूलभूत सिद्धांत शुरू की बहुत सी गाथाओं में अत्यंत अत्यंत सुंदर रूप से किस लोकोत्तर वैज्ञानिक ढंग से समझाने में आया है। वहाँ द्रव्य सामान्य का स्वरूप जो अलौकिक शैली से पद्धति से सिद्ध किया है, इसका ख्याल वाचक को उस विभाग को स्वयं को बिना पड़े आना मुश्किल है, अशक्य है। वास्तव में प्रवचन सार में वर्णन किया हुआ ये द्रव्य सामान्य निरूपण अत्यंत अभाग्य और परम प्रतीतिकर है। इस प्रकार द्रव्य सामान्य का ज्ञान रूपी सुदृढ़ भूमिका को रचकर द्रव्य विशेष का असाधारण वर्णन, प्राणादि से जीव का भिन्नपणा, जीव देहादि का कर्ता कार्यता अनुमंता नहीं, इसी हकीकत वास्तविकता, हकीकत माने वास्तविकता, जीव का पुद्गलपिंड से अकर्तापणा, निश्चय बंध का स्वरूप, शुद्धात्मा की उपलब्धि का फल, एकाग्र संचेतन लक्षण ध्यान आदि आदि अनेक विषयों का अति स्पष्ट प्रकार से समझाने में आया है। इस सब में स्वप्र का भेद विज्ञान ही मित्र रहा है। मित्र रहा क्या मैंने मित्रता है क्या हिंदी में मित्र रहा है मित्रता है मित्रता है। पूरे अधिकार में वितराग प्रणी द्रव्यानुयोग का तत्व ठोस के भरा है। शासन का मौलिक सिद्धांतों का अबाध युक्ति से सिद्ध किया है। इस अधिकार जिन शासन का स्तंभ समान है, आधारभूत है, मैंने स्तंभ समान मैंने जीशान जिन शासन का आधारभूत है, इसका उन्नान से अभ्यास करने वाला मध्यस्थ सुपात्र जीव को जैन दर्शन ही मेरे उन्नान में ले जाता है। कोई उच्च कोटि का मुमुक्षु को निज स्वभाव की प्राप्ति कराता है और कोई सामान्य मुमुक्षु वहां तक न पहुंच सके तो उसका हृदय में भी श्रुत रचना कर अद्भुत और अपार है ऐसा मैं तो जरूर घर कर जाता है।